आइए।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
असल में दादी आई हैं तुम्हारे बाबा से मिलने, तो मैंने भी सोचा तुमसे आकर मिलने।
नानी जान को पापा से क्या काम है?
पता नहीं, कह रही थी कि अलग से बात करना चाहती हैं। सासान,
क्या हुआ?
वसीयतनामे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
देखो, मैं तो अपना ख्याल बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारा ख्याल सुनना चाह रहा हूँ।
मुझे डर है उस बार की तरह गुस्सा ना हो।
उस बार की तरह?
वही नरगिस का मामला और वो 1 मिलियन का चेक और यही
तो
बात। जो भी हो, इसी चीज़ के बारे में जो जानमाज के नीचे थी। लेकिन जब भी सोचती हूँ वही रात याद आती है जब तुम्हारे बाबा वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, याद है? हाँ
हाँ, उसी रात जब वो घड़ी जमीन पर गिरी थी ना।
बिल्कुल।
मुझे यकीन है कि आफाक अपने तरीके से सरमस को बदनाम करेगी। तुम्हारे ख्याल में समझ गई है कि वसीयत जाली थी या नहीं?
हाँ जी, लेकिन अभी यकीन नहीं है।
काश किसी सूरत इत्मीनान दिला पाते।
सलाम अलैकुम अम्मी बीजान, आप यहाँ कैसे बगैर इत्तला के? कहती हैं तो कुछ कुर्बानी वगैरह करते हैं आपके इस्तकबाल में। बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी जान, खुदा की कसम अगर मुझे मालूम होता कि आप आने वाली हैं तो अपना पैर तोड़कर यहीं बैठ जाता और बाहर न जाता।
कोई बात नहीं, यहाँ आए तो हाजी की यादें ताज़ा हो गई हैं।
देखिए, मेरी रोज़ की यही हालत है। यकीन करें, मैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ सका हूँ एक लम्हे के लिए भी। हाजी की कुर्सी पे मैं कभी भी, मैं क्या करूँ?
मनु चेरमिया, एक बहुत अहम बात कहना चाह रही हूँ, बहुत गौर से सुनो।
जी फरमाइए। हमारे और आपके दरमियान कोई तकल्लुफ तो नहीं है? ठीक है कि मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन बहरहाल आपसे तो बहुत छोटा हूँ। जो काम भी सिफारिश हो, जो हुक्म हो, मुझे फरमाए सर आंखों पर। जो फरमाए, जो कहे, मैं अंजाम देने को तैयार हूं।
सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ।
सवाल पूछे मीजान?
वही तो, पूछना ही तो मुश्किल है।
क्यों, क्या बात है? आखिर कोई मम्मा तो नहीं आखिर?
हाजी तुमको बहुत चाहते थे, घर में तुम्हारी रोज आना ही तारीफ करते।
एक मिनट अपना कान बंद कर लीजिए, चूंकि हाजी
कहते थे कारखाने में बहुत मेहनत करते हो।
पागल थे जो समझ नहीं पाए कि अपनी आस्तीन में सांप पाल रहे हैं।
सीमा को भी बहुत चाहते थे, सासान और सितारा भी उनकी जान थे।
जी, खुदा उनको अच्छे बच्चे करे।
हैफ,
उनकी कब्र पर नूर की बारिश हो। बेशक वो ऐसे ही थे, मुझे बहुत चाहते थे। कहते थे आफाक के बाद मैं तुम्हें चाहता हूँ। खुदा रहमत करे।
ये अजीब नहीं है कि वसीयतनामे में आपका नाम लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत सोचा और समझ नहीं पाई कि इतना हिस्सा आपको देने का मतलब दूसरे के हक को ना हक करना है।
जी जी, समझ गया समझ गया। क्या कहना चाहती हैं? शायद आप समझती हैं कि मैंने हाजी की मोहब्बत से गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है अपने हक में। मैं उनकी रगों में दाखिल हो गया, उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मेरे हक में वसीयत लिखें, वसीयतनामा ऐसा लिखें।
देखा तुमने, देखा तुमने कैसे अपने आप को अनजान बनाने की कोशिश कर रहा है।
वसीयतनामा पढ़ा गया है तब से ऐसा लगता है कि अंगारों पर खड़ा हूं। अंदर से मैं जल रहा हूं और बाहर से दूसरे लोग।
खुदा करे वो आग तुम्हारी जबान पर पड़े जो इतनी बकवास कर रहे हो।
मैं कैसे कहूँ, सबकी निगाहें मुझे अजाब दे रही है। खुसरो साहब तो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे ही घूरे जाते हैं, मुझे ही देखे जाते हैं बार बार। ऐसा मुझे देखते हैं कि औज़ु बिल्ला, खुदा न खास्ता, मैंने उनके बाप के इसको हड़प लिया है।
तुम्हारी जात पर लानत है सरमस्त।
कभी नहीं, कभी नहीं हाजी से कोई फरमाइश नहीं की मैंने। इस रोजे की कसम जो आज मैंने रखा है कि जिसका सवाब हाजी तक पहुंचे, कसम खाता हूं कि एक बार भी फैक्ट्री में काम के बारे में बात नहीं की, उनसे कोई ख्वाहिश नहीं की, कभी कुछ नहीं चाहा मैंने।
सुनो मनुचेर, एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, मुझसे ज्यादा हाजी को कोई नहीं जानता था।
इसका कौन इनकार कर सकता है?
मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे किसी की गीबत हो।
कुछ कहिएगा भी नहीं, क्योंकि अगर जबान पर लाई तो खुदा खास्ता क्या होगा, तोहमत।
आफाक, कहीं उसके धोखे में ना आ जाना और पीछे हट जाना, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है।
शायद अम्मी जान अगर मेरी जगह कोई और होता اور اسے اتنی دولت مل جاتی تو آسمانوں پر اڑ رہا ہوتا۔ اتنی دولت کا مالک جو ہوا ہے، لیکن خدا گواہ ہے امی جان، آرزو کر رہا ہوں کہ اے کاش حاجی نے ایسی وصیت نہ کی ہوتی اور
تم یہاں کھڑے کھڑے اس کے جھوٹ سن رہے ہو۔
میں انسانوں کی اصلیت کو تو نہیں بدل سکتا حاجی۔
ارے بھائی کچھ تو کرو، کوئی چیز، کوئی کام، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
منو چیرمیاں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں لمبی عمر گزار چکی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ میرے بچوں کے پاس بھی خدا کا شکر ہے اتنا ہے کہ ان کو اپنے باپ کی جائیداد کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اس قرض اور دین کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔
کیسا قرض امی جان؟ آپ تو خود وصیت نامہ دیکھ چکی ہیں، آخر اس بارے میں تو وصیت نامے میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، جبکہ مجھے تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ آج ہی کسی کے مقروض نہیں ہو سکتے کسی بھی حالت میں، یعنی وہ ایسے آدمی تھے ہی نہیں کہ کسی کا قرضہ لے کر ادا نہ کرتے۔
اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس کا قرض ان پر ہے تو میں اسے اپنے اوپر لے لوں گی، اپنے پیسوں سے میں اسے ادا کر دوں گی۔
کوئی قرض ان پر نہیں ہے، میں نے تو کہہ دیا۔
اگر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کیا ہے، کس کا حق حاجی کی گردن پر ہے، تو نہیں پوچھوں گی کہ کیسے آپ کو پتا چلے۔ میں لوہے کی دیوار بن کر اس وصیت نامے کو قبول کر کے جو حاجی کی طرف سے پڑھا گیا ہے آپ کا ساتھ دوں گی۔
بہت بہت شکریہ۔
تم بتا دیں
میں آخر کیا کہوں آپ سے، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں۔
آفاق جھوٹ بول رہا ہے، خدا کے لیے اس کا یقین مت کرنا۔
حاجی کی عاقبت خراب نہ ہو اس کے لیے میں پوری دنیا لٹا سکتی ہوں منو چیر، تو پھر حاجی کی آخرت سنوارنے دو، دنیا کی تمام چیزیں میں تمہیں دے دوں گی۔
امی جان، حاجی کی پاک روح کی قسم کھاتا ہوں، حاجی کی پاک روح کی قسم کھاتا ہوں، سب سے امید تھی لیکن آپ سے نہیں تھی، میں تو محتاج اور خسرو کی شکایت لے کر آپ کے پاس آنے والا تھا، لیکن آپ کی شکایت کس کے پاس لے کر جاؤں میں آخر؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، خدا کی قسم نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔
تم کہنا چاہ رہے ہو کہ بابا تمہارے رشوت دینا چاہ رہے تھے کیا کر کے کہ دادا جان شاپنگ سینٹر صرف تمہارے نام کرنا چاہ رہے ہیں؟
میرے اور ستارے کے نام؟ دیکھو مہتاب، مجھے پتہ ہے کہ وہ کام جو میں نے کیا وہ غلط تھا، ایک وجہ تو تم ہی تھی، لیکن اس سے اہم میرے بابا کا رویہ تھا۔
ایسا ہو سکتا ہے؟ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے بابا پیسوں کے لیے اتنا گر سکتے ہیں کہ وصیت نامہ بدل دیں؟
مجھ سے پوچھو تو ہاں۔
اچھا، بہت عجیب ہے۔
میرے خیال میں نانی جان اور خسرو ماموں سے کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں۔ اس وقت تو نانی جان بھی یہاں ہیں۔
لیکن جا کر کیا کہیں گے؟
سب کچھ، وہ نماز خانے میں جانے والی رات سے لے کر تمہارا حق ہڑپنے کی بات تک، اور وہ وصیت جو کسی عقل میں نہیں بھاتی۔
نہیں ساسان، اتنی آسانی سے کسی پر تہمت نہیں لگایا جا سکتا۔
بیوقوفی تو یہ ہوگی کہ اگر ہم چپ رہے ہیں اور بابا کو اپنی مرضی چلانے دیں۔
دیکھو پہلے کسی بزرگ سے بات کرتے، اور دوسری بات وہ تمہارے بابا ہیں، اگر بات صحیح ہو تو انہیں احساس نہیں دلانا چاہیے، چونکہ اگر غلطی ثابت ہوئی تو وہ نہ مجھے معاف کریں گے نہ تمہیں۔
ٹھیک ہے، تو پھر اسی وقت خسرو ماموں کے پاس چلتے ہیں۔
دیکھو اس وقت نہیں ہو سکتا، پہلے تو یہ کہ بابا گھر پر ہیں، دوسری بات مجھے دادی جان کو گھر لے کے جانا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ میری امی کے سامنے یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ کل ہونے دو، پھر ساتھ میں بابا کی کمپنی چلیں گے اور وہیں بات کریں گے، جو وہ مسئلہ سمجھیں وہی کیا جائے گا۔
ہلو، ٹھیک ہے ٹھیک۔ نانی جان شاید جانا چاہ رہی ہیں۔
ٹھیک ہے، چلتی ہوں۔
مہتاب
بولو۔
اس میں جو کچھ بھی نماز خانے میں رہا ہو، کچھ بھی، پتہ نہیں وصیت نامہ تھا یا کچھ بھی، میرے خیال میں اس وقت بابا کے سامانوں میں مل جائے گا۔
سامانوں میں؟
ہاں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے پھینک دیا ہو اور شاید کسی الماری یا صندوقچے میں رکھا ہو، لیکن میں چپکے سے اسے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ مجھے ایسے مت دیکھو، نانا جان کی روح عذاب میں ہے، مجھ سے مدد مانگی ہے، میں ضرور ان کی مدد کروں گا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کوئی سمجھ نہیں پائے گا، مجھے اپنا کام آتا ہے، میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں۔
ساسان یہ کام جو تمہیں آتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔
لیکن
अब लेकिन क्या, कहा ना कि कल बाबा के ऑफिस चलेंगे, जो वो कहेंगे वही किया जाएगा। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। बाबा हैं?
नहीं, तशरीफ़ नहीं रखते हैं।
उफ़ उफ़, मुझे उनसे काम था।
कहीं तो उनके मोबाइल पर फ़ोन करूं?
नहीं, कमरे में उनका इंतज़ार कर लेता हूं। शुक्रिया।
सरमद साहब, आपके बेटे कमरे में इंतजार कर रहे हैं, कोई काम है शायद।
सासान,
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम। बेटा, मुझसे कुछ काम था?
काम तो
क्या है, बोलो।
असल में
क्या बात है, बोलो, कहो तो, क्या काम है?
ठीक, मुझे ये पूछना था कि कब वो शॉपिंग सेंटर मेरे नाम करेंगे।
आपके नाम नहीं, तुम्हारे और महताब के नाम। शायद अपनी हरकतों को भूल गए हो तुम।
अच्छा, मेरे और महताब के नाम सही।
मेरी समझ में ये नहीं आता, कभी तो इतने शरीफ बन जाते हो और कभी ऐसी बातें करने लगते हो।
तो नमाज से मुराद नमाज खाना था और वो मख्फी जगह।
जी हाँ जी, लेकिन मुश्किल यहाँ है कि वो जगह भी खाली मिली। अब हम सोच रहे हैं कि फिर हाजी क्या कहना चाह रहे थे।
मैं भी जो इस मामले के सिलसिले में समझ पाया हूँ वही है जो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। एहतमाल है कि हाजी किसी मुश्किल में है जिसे तुमसे हल करवाना चाहते हैं।
इत्तेफाक से जब हाजी से आखिरी बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वो बहुत ही एक अहम बात मुझे बताने वाले हैं, मुझसे वादा लेने वाले थे, लेकिन मौका नहीं मिला उन्हें अपनी बात कहने का। मुझे बस इसी का खौफ है।
तो सादिक मियां, और पूछताछ कीजिए। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, किसी का कर्ज या दैन उनकी गर्दन पर तो नहीं है जिसका इल्म आपको ना हो? को तो इल्म है कि खुदा अपने हक से दरगुजर कर सकता है, लेकिन हक़ुन्नास माफ नहीं करता। सबसे बड़ी मुश्किल एक मुसलमान की मौत के बाद उसके अजीज और अकारीब हक़ुन्नास तो माफ करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए साहिब हक को पहचानना भी जरूरी है और उनकी रजामंदी हासिल करना भी, और घर वालों से हलालियत लेना भी।
लेकिन हाजी ऐसे नहीं थे कि जो किसी का हक जाया करते।
वल्लाहु आलम। अपनी बहन की नजर के बारे में उनसे कहिएगा कि अब जब उस नौजवान का ऑपरेशन हो चुका है तो नजर उनसे साकित है, चाहे तो दूसरा फैसला ले सकते।
ठीक है, जरूर मैं कह दूंगा। हाजी, आप मुझे इजाजत देंगे?
एक मिनट सादिक मियां, कहां इतनी जल्दी। या अल्लाह।
छप गई।
अगर कहूँ दूसरा एडिशन भी होने वाला है तो यकीन नहीं करोगे ना।
इतनी जल्दी?
खुदा का लुत्फ था, बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ।
वाकई तो मुबारकबाद जरूरी है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई।
मुबारकबाद तो उसके बानी को कहना चाहिए और उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेहनत की थी। इंशाल्लाह हाजी फत्ताह को भी इस काम का सवाब और अज्र जरूर मिलेगा।
उससे तो कुछ नहीं कहा था।
कहते थे मेरे और तुम्हारे अलावा सिर्फ खुदा को इल्म होना चाहिए।
हमेशा मेरा यही ख्याल रहता था कि वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। मैं खुद को महरम-ए-राज समझती थी लेकिन नहीं थी। मुझसे बहुत चीजें छुपाते रहते थे, जैसे वही जानमाज के नीचे वाली चीज। कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा।
शायद तुमको नाराज नहीं करना चाह रहे होंगे, तुम तो उनके मिजाज से वाकिफ थी।
कहां हैं जो मुझे देखें कि मैं किस तरह तड़प रही हूं। यही सोचती रहती हूं कि हाजी का क्या होगा, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ।
खुदा का शुक्र करो आफाक, फत्ता ऐसे नहीं थे कि खुदा भी उसे भूल जाता। अब जब हाजी तवसुली से अपना जवाब ले चुकी हो तो क्या सोचा? मेरा मतलब है दिल के डोनेशन के बारे में।
मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, डॉक्टर नेकजात की वालदा के लिए रजायत दे दूंगी, लेकिन ऑपरेशन से पहले मैं कुछ देर उनसे बात करना चाहूंगी। एक गुजारिश है उनसे करना चाहूंगी।
अच्छी बात है, मैं उनसे टाइम लेता हूँ।
बहुत शुक्रिया।
वाकई सच बोल रहे हो?
तो और क्या, मैं तुमसे कब झूठ बोला हूं?
कहा था ना कि मेहदी भाई का ख्वाब देखा है, बहुत खुश थे।
अब कैसे वो राजी हो गए? हाजी सादिक ने कहा था क्या?
पहले भी मैं यही सोच रहा था कि सादिक ने अपनी बहन को मजबूर तो नहीं किया है, लेकिन कसम खाए कि नहीं, खुद हाजिया साहिबा ने यह बात कही थी। अलबत्ता हमसे पहले मिलना चाहती हैं और अम्मी से कुछ कहना भी चाहती हैं।
किस लिए, क्या कहना है?
नहीं मालूम, सादिक भी नहीं जानते थे।
पहले मैं चाहती हूँ ये खबर अम्मी को दूँ।
कहाँ, बैठो, इस वक्त कुछ कहने की जरूरत नहीं।
क्यों, कहना नहीं है?
हाँ, रजायत दे दी है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी होता है। आपको मालूम है कि ट्रांसप्लांट के कुछ असलो उसूल होते हैं अपने, लेकिन चूंकि अम्मी का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले है, अगर खून मैच हो जाए तो दिल उनको सबसे पहले मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो बेहतर है इस बारे में अम्मी को कुछ ना बताया जाए।
तो इसकी रिपोर्ट कब आएगी?
पहले तो उन्हें जाकर रजायत देनी होगी।
हाँ मेहताब, अम्मी जान को सरमत से क्या काम था?
अम्मी जान, मैं 3 बार कह चुकी हूँ, वो अकेले उनसे बात करना चाह रही थी। अब बता, सासान कुछ और कह रहा था। बाबा जान, आपका फोन बज रहा है। बाबा फोन।
जी अम्मी जान। नहीं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं सुबह को आता हूँ 10 बजे। ठीक है तो फिर 10 बजे रखता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।
बाबा जान क्या हुआ?
कुछ नहीं बेटा, अम्मी जान कल रजायत देने के लिए जाएंगे।
देख रहे हो कैसे मेरे बच्चे हैं, जरा बराबर भी तौफीक नहीं हुई कि इस बूढ़ी औरत को अपने पास ले जाते या उसके पास आते कि इस तरह अकेले सहरी ना खाती।
ऐसी बात नहीं करो आजी, तुम्हारे बच्चे तो अच्छे हैं। देखा तो खुद आफाक ने मना किया था।
हाँ जानता हूं, किसी वक्त उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वरना अकेले सहरी या इफ्तारी करने से हमेशा भागती थी।
इत्तेफाक से इस वक्त उन्हें तन्हाई पसंद है, अकेले में रहना चाहती हैं और तुम्हारे लिए दुआ करना चाहती हैं। इस वक्त उनके दिल में हंगामा पपा है, खुदा से चाहती हैं कि उनके सामने ऐसा रास्ता करार दे कि तुम्हारे हक में बेहतरीन फैसला कर सके।
तुम जब आफाक की फिक्र पढ़ लेते हो तो ये भी जानते होगे कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं।
जानता हूं हाजी, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो।
जहां तक मुझे इल्म है, फरिश्ते ऐसे लतीफ मौजूद होते हैं कि जो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं सिवाय कुत्ते और सूर के, है ना? अब क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने आप को एक परिंदे या इंसान की शक्ल में मुजस्सम करो और फिर मेरी पूरी बात आफाक से कहो, इस मुसीबत से निजात दिलाओ।
तुम्हारी गलती यही है जी, फरिश्ते कभी इंसान की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते, कभी भी।
अरे बाबा, तो फिर ये सब जो हमने पढ़ा था वो सब गलत है? क्यों मुजस्सम नहीं हो सकते? तो फिर कैसे हजरत जिब्राइल जनाबे मरियम के सामने एक इंसान की शक्ल में आए थे? ये तो कुरान में भी मौजूद है।
فارسلنا عليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وہ مجسم نہیں ہوئے تھے، ممثل ہوئے تھے، یعنی جناب جبریل جناب مریم کے ادراک اور فکر میں بشر کی صورت میں دکھ رہے تھے، لیکن در حقیقت اس وقت بھی انہوں نے بشر کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ بالکل میری طرح حاجی، میں تمہارے ادراک اور فکر میں بشر کی شکل میں ہوں، لیکن میری حقیقت یہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ کیوں بشر کی طرح آفاق کے سامنے ممثل نہیں ہوتے تاکہ ان کو سب کچھ بتا دیتے اور ہمیں بھی سکون دلا دیتے؟
چونکہ ہم فرشتے گفتگو میں خدا سے سبقت حاصل نہیں کرتے۔
لا يسبقونه بالقول وهم لأمره یعملون۔
دیکھو مجھے تم پر ایک اعتراض بھی ہے، شروع سے تمہارا فرض تھا میرے مامور فرشتے کی حیثیت سے میری حفاظت کرتے، میری رہنمائی کرتے، میری ہدایت کرتے، تو پھر کیوں 40 سال پہلے کوئی جھٹکا مجھے نہیں دیا کہ شریفہ کے ساتھ ظلم نہ کرتا؟
اس کا جواب بھی ضرور دوں گا حاجی، فی الحال تمہارے نواسی کی حفاظت کرنا ہے موقع نکلنے سے پہلے۔
مہتاب کی؟
نہیں، ساسان کی۔
अम्मी क्यों अचार नहीं लाई?
अचार? बेटा अगर अचार खाओगी तो दिन में प्यास लगेगी,
लाइए।
पापा को नहीं जगाएंगी?
बुलाया तो था, कहा नहीं रख पाएंगे।
कहा?
खा चुका बहुत अच्छा।
क्या मतलब खा चुका बहुत अच्छा था? तुमने क्या खाया है?
इफ्तार बहुत ज्यादा कर लिया था।
भूख लग जाएगी बेटा, लो देखो तो। अपनी प्लेट देना बेटा।
तुम इसकी क्या मदद करना चाहते हो? क्या ढूंढ रहा है?
वही जो नमाज खाने में तुमने रखा था।
क्या बैग में है?
नहीं।
देखो जरा, जिन की तरह सो रहा है, आवाज तो सुनो। बेचारी सीमा इतने शोर में कैसे सोती होगी बेचारी।
कामयाब, 100 मिलियन कामयाब।
शाबाश, देखा कितना समझदार बच्चा है मेरा। यही मेरी मदद कर सकता है, अलबत्ता आपकी मदद से।
अम्मी, अम्मी, अम्मी।
क्या है बेटा? पापा सो रहे हैं।
ठीक है, बहुत भूख लगी है।
क्या मतलब भूख लगी है? नीचे इतना खाना रखा था, तब भूख नहीं थी, अब भूख लग गई।
कुछ बनाइए ना, भूख लगी है।
जाओ गरम कर लो।
अरे मुमकिन हो तो बना लिए ना, मतलब? बहुत भूख लगी है।
मुझे सोना है। ठीक है, एक बार इनके लिए खाना गर्म करो, एक बार उनके लिए। अच्छी मुसीबत है कसम से।
कोई चारा भी नहीं है, उनसे बात करो और तस्कीन दिलाओ। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़।
خدا حافظ.
सासान
कहाँ हो मेहताब?
कल रात इतना फोन कर रहे थे लेकिन तुम्हारा मोबाइल बंद था.
क्या काम था?
तुमसे मिलना है. कल पापा के सामानों की तलाशी ली थी मैंने.
उफ़ो, मैंने मना किया था ना.
बैग में ऐसी चीज मुझे मिली है जो हमारी बातों का सबूत है. जल्दी खुसरो मामू से मिलना है.
अभी नहीं सासान.
मैं कह रहा हूँ बहुत अहम है.
कहा तो अभी नहीं.
मेहताब तुम रो रही हो.
पापा दादी जान को लेकर हॉस्पिटल गए हैं ताकि वो डोनेशन के लिए तैयार हो जाए.
रो नहीं मेरी जान, आज नहीं तो कल ये काम तो होना ही था.
अम्मी,
सीमा बेटी मेरी जान, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ रसायत देने के लिए.
तुम्हें और खुसरो को भी रसायत देनी होगी.
तो चलो हॉस्पिटल में मिलेंगे. अम्मी जान,
सीमा
मेरी जान सब्र करो.
ठीक है खुदा हाफिज. अम्मी जान सीमा थी, वो निकल चुकी थी, रास्ते में है, बस पहुंचने वाली है.
मैं उनसे एक बार और अकेले में मिलना चाहती हूँ. हाजी फत्ता सलाम अलैकुम. बेवफा सलाम अलैकुम. मुझे छोड़कर चले गए ना. बहुत बेवफा निकले.
ऐसा मत कहो आफाक.
आफजी किए बगैर चले.
मेरा दिल मत दुखाओ.
मैं तुमसे रुखसत होने आई हूँ. तुमसे माफी मांगने आई हूँ.
आफाक तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए.
मैं कहने आई हूँ मेरी गलतियों को माफ कर दो. मैं माजरत चाहती हूँ, माफ कर. तुमने तो कोई गलती नहीं की है, मुझे बिल्कुल याद नहीं. अगर की भी हो तो मुझे इल्म नहीं. मैं माफ करती हूँ. आराम से रहना हाजी फत्ता. हाजी तुम पर कैसा कर्ज है नहीं मालूम. जो मैं करने जा रही हूँ उससे तुम राजी हो या नहीं. मैं राजी हूँ सिर्फ खुदा की नजर में. मैंने तुम्हारा सौदा खुदा से किया है. तुम्हारा कर्ज मैं किसी को दे रही हूँ और तुम्हें खुदा के सिपुर्द कर रही हूँ. मुझसे राजी रहना हाजी.
देखो मैं राजी हूँ कि तुम रजामंदी दे.
उम्मीद है कि मुझे माफ कर.
लेकिन अभी मेरा काम फंसा है.
उम्मीद है कि तुम राजी होगे तुम खुद भी.
अगर ये मशीन बंद करवा दी तो मेरा काम खत्म है. खुदा के पास से थोड़ा मौका दो.
आफाक, आफाक।
सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। मैंने तुमसे कहा था ना।
हाँ, लेकिन मेरा आना ज़रूरी था। सलामुअलैकुम वानी जान, मुझे मालूम है क्या मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यकीन कीजिए बहुत अहम है। अगर मुमकिन हो तो मेहताब से बात करना चाह रहा था।
बात जो बात करनी है कर लो।
अगर मुमकिन हो तो अलग से बात करना चाह रहा था, सिर्फ एक मिनट के लिए।
कहो मेहताब। बोले बेटी, क्या हुआ है? हाँ, अस्पताल में हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मुझसे काम है? ठीक है, एक काम करो, तुम लोग वहाँ से कंपनी पहुँचो, मैं भी वहीं पे आता हूँ। नहीं नहीं, ज़रूर। ठीक है ठीक है, आया। सुनो सीमा, एक ज़रूरी काम पेश आ गया, जाना पड़ेगा। एक जहमत करना, अम्मी जान को तुम्हें पहुंचा देना।
ठीक है, तुम जाओ अपना काम देखो, मैं पहुंचा दूंगी।
कोई मुश्किल तो नहीं ना?
नहीं, जाओ।
शुक्रिया। दस करोड़ तुमान कामयाब को दिए हैं बेटा, ये तुम्हें कैसे मिला?
कुछ और तलाश कर रहा था, लेकिन ये मिला।
कौन सी चीज?
नाना जान का असली वसीयतनामा।
नाना जान का असली वसीयतनामा?
मां, मुझे मालूम है कि आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा कि वो वसीयतनामा जो उसने पढ़ा गया है वो असली वसीयतनामा रहा होगा। मैं तो सबके आंखों में पढ़ रहा था, और वो बातें जो नए शॉपिंग सेंटर के कागजात पर कलम चलाने के बारे में भी।
शॉपिंग सेंटर के पेपर्स धांधली?
बाबा चाहते थे कि किसी को तिल्ला मिलने से पहले रिजवी साहब को राजी कर लें कि वो कागजात मेहताब की जगह सितारे का नाम कर दें।
बेटा, ये बात तुमने खुद मनुचर से सुनी है? मतलब उन्होंने तुम्हें ये बात बताई है?
इससे पहले मुझे ये बात करनी चाहिए थी। उस रात भी मैंने खास करके ये बात छेड़ी थी कि बाद में बाबा उससे इनकार न कर बैठे। मामू, नाना जान ने कहा था कि उस जानमाज के नीचे बहुत अहम चीज़ रखी है जिसे सादिक मामू तक पहुँचाना ज़रूरी है, तो फिर वो जगह खाली नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने और मेहताब ने सोचा कि शायद असली वसनामा वहीं रहा होगा।
बेटा, तुमने अपने बाबा से इस चेक के बारे में कुछ पूछा है कि क्यों ये पैसे कामयाब को दिए?
नहीं मामू, लेकिन उसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है।
सासान, लेकिन हम अभी किसी चीज़ से मुतमइन नहीं हैं। पापा, सासान को ये चेक आज सुबह उनके बैग में मिला है। कामयाब साहब के पास जाना चाह रहे थे, मैंने रोक लिया। मैंने सोचा पहले आपके पास आना चाहिए कि मालूम सके इन पैसों की वजह क्या थी।
बहरहाल तुमने अच्छा काम किया, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ और इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तक मैं इसकी वजह मालूम कर रहा हूँ और चेक के मामले को वाजे कर रहा हूँ, इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे, ठीक है?
शुक्रिया मुझे।
तुम्हारा शुक्रिया बेटा। खुदा हाफिज़ बेटा।
आसान। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा अपने बाबा के बारे में ऐसे बात करूं।
बहुत ज़्यादा मेहताब, बहुत ज़्यादा।
जी वाह भाई खुसरो साहब, शुक्रिया।
मैंने फोन किया था कि जरा कामयाब के ऑफिस पहुंचो।
कामयाब के ऑफिस? वहां किस लिए? कुछ हुआ है क्या?
नहीं, एक जरूरी बात है, वहीं करते हैं।
कैसी बात?
ऐसे नहीं बता सकता, आमने सामने तुम लोगों की बात सुनना है।
मैं अभी बस उसके ऑफिस पहुंचा हूं, ऊपर जा रहा हूं, तुम भी जल्दी पहुंचो।
लेकिन इस वक्त मामला क्या है आखिर? बहुत काम है मेरे पास।
मुझे भी बहुत काम थे, लेकिन कुछ भी इससे ज्यादा अहम नहीं है। तुम यहां पहुंचो, पता चल जाएगा।
मुंतजिर हूं।
जहन्नम में जाओ तुम भी, तुम्हारा काम भी और सब कुछ। अस्तगफुर।
खुसरो साहब, नहीं तो?
नहीं मालूम, अभी शायद वहीं है, मुझे भी वहीं बुलाया है उसने।
अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया।
लेकिन एक मिनट, एक मिनट। हाँ क्या हुआ?
कामयाब साहब, सुल्तानी साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं।
हाँ आ गया है, अभी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखते हैं क्या बात है।
ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, खुदा हाफिज।
वाह भाई सुल्तानी साहब, कोई खास बात है जो ज़ियारत की दोबारा तौफीक हुई? अस्सलाम वालेकुम कामयाब साहब, एक ज़रूरी बात है जिसके लिए हाजिर हुआ हूँ। जी फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो सरमा साहब भी आ जाएं, उनके सामने गुफ्तगू हो तो बेहतर है। आपकी नज़र से तो कोई मुश्किल नहीं? कोई बात नहीं सुल्तानी साहब, आइए तशरीफ़ लाइए।